भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। अगर आप लोग चाहेंगे ना तो ये हॉल को आप ऐसा गुंजन से भर सकते हो। अगर आप हृदय से नहीं नाभि से पुकारोगे ना तो ये पूरा हॉल गूंज उठेगा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए गौरांगा गौरांगा गौरांगा। हरे कृष्णा। तो आज का ये दिन जो है वो विशेष करके आज का जो कार्यक्रम है शंकराचार्य जी के मंदिर के प्रांगण में स्वामी श्रद्धानंद अस्पताल के प्रांगण में जो भक्ति वेदांत हॉस्पिटल के द्वारा चलाया जा रहा है ये बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। शायद अभी आपको समझ में नहीं आएगा लेकिन धीरे धीरे समझ में आएगा कि ये किस प्रकार से ऐतिहासिक दिन है। ऐसे ही एक दिन पश्चिम बंगाल में एक गाँव है उसका नाम है खेतुरी ग्राम। उसमें ऐसा एक ऐतिहासिक उत्सव हुआ था। उस समय नरोत्तम दास ठाकुर जी महाराज जो बहुत बड़े संत हुए बंगाल में उन्होंने अपने नेतृत्व में अपने गांव में जिस गांव में वो युवराज थे लेकिन विरक्त होकर संत बने उनके भाई राजा बने तो अपने ही गांव में अपने ही जहां राज्य था उनका वहां पर उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु का गौर पूर्णिमा जन्मोत्सव मनाया। और वो ऐतिहासिक इसलिए हुआ क्योंकि इसमें बहुत सारे संत लोग सम्मिलित हुए बहुत सारे एक से बढ़कर एक इनकी कीर्ति थी भक्ति में एक से बढ़कर एक भगवान को प्रेम करने वाले शुद्ध भक्तों का संगम था। और उससे बड़ी बड़ी एक बात थी कि उसमें बलराम जी के अवतार श्री नित्यानंद प्रभु की पत्नी जानवा देवी एक प्रमुख भक्त के रूप में वहां पर उपस्थित थी। और भी एक विशेषता थी कि उन्होंने अपने हाथ से सारा भोजन बनाया था और इतना भव्य इतना दिव्य गौर पूर्णिमा यानी चैतन्य महाप्रभु का जन्मोत्सव जो आज है वो मनाया गया कि उसमें आखिर में जब कीर्तन हुआ ना तो वो कीर्तन में नरोत्तम दास जी खुद गा रहे थे और सब भक्त लोग प्रेम से कीर्तन कर रहे थे। उसको कहते हैं प्रेम संकीर्तन। हाँ साधारण कीर्तन नहीं बताऊंगा उसके बारे में प्रेम संकीर्तन क्या होता है। तो उस प्रेम संकीर्तन में सब लोग जब भाव विभोर होकर नृत्य कर रहे थे। संकीर्तन में दो बातें होती एक होता है गायन मुख से भाव विभोर होकर और एक होता है नृत्य करना नाचना और गाना साथ में कोई ज्यादा कम नहीं होता है नाचना भी है उतना ही जोरदार गाना भी उतना जोरदार। तो ऐसे प्रेम भरे संकीर्तन में जब वो गायन कर रहे थे और नृत्य भी कर रहे थे और भाव विभोर होकर अपने आप को खो चुके थे उस दिव्य अवस्था में अचानक उस संकीर्तन में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु अवतरित हो गए। श्री गौरांग महाप्रभु की जय। चैतन्य महाप्रभु उस समय अपने लीला को समाप्त करके अंतर्धान हो गए थे, नित्यानंद प्रभु भी चले गए थे अपने धाम में, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के कीर्तन में, पुकार में इतना दर्द था, इतना प्रेम था, जैसे बार बार मैं कह रहा था ना, पुकारो पुकारो, क्योंकि हमारा जो भगवान का नाम का कीर्तन है ना, वो पुकारने के लिए है, मनोरंजन के लिए नहीं है। मनोरंजन तो होते रहता है अपने आप ही, लेकिन मनोरंजन के लिए नहीं है वो, भगवान का ध्यान हमारी ओर आकर्षित करने के लिए, भगवान की कृपा हमारी ओर आकर्षित करने के लिए, ताकि जीवन का सर्वोच्च धन जो है उसका वर्षा हम पर हो और हम लोग भगवान के चरणों से प्रेम से जुड़ जाए। इसलिए वो हम कहते हैं पुकारो। तो वो चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु, कृष्ण और बलराम दोनों बहुत देर तक वहां पर भक्तों के बीच में कीर्तन करते रहे और फिर अदृश्य हो गए, लेकिन सबने दर्शन किया। तो उसी प्रकार का हमारा ये उत्सव है आज का। सबसे पहले बहुत लोग यहाँ पर हमारे पास पास के गांव से, घरों से, हमारे परिवार और हमारे जो पड़ोसी हैं वो भी आए हैं यहाँ पर। यहाँ पर विरार के भक्त हैं, यहाँ पर वसई के भक्त हैं, बहुत सारे भक्त इकट्ठा हुए हैं। तो साथ में हमारा शुद्धानंद स्वामी आश्रम और हॉस्पिटल के आजू बाजू में जो गांव हैं उनके हमारे पड़ोसी मेहमान भी यहाँ पर आए हैं। तो सब लोगों के लिए बताना चाहते हैं कि गौरांग महाप्रभु कौन है। गौरांग महाप्रभु स्वयं कृष्ण है। भारत में हमारे इतिहास के किताब में हमने पढ़ा था कि एक पश्चिम बंगाल में संत हुए थे जिनका नाम चैतन्य महाप्रभु था, और वो भगवान के नाम का कीर्तन करते हुए महामंत्र का, और वो रास्ते पर ऐसे जुलूस लेकर घूमते थे वाद्य लेकर, ऐसा उनको। लेकिन भगवान को केवल संत कहना ये अच्छी बात नहीं, ये केवल दो कारण से हो सकता है, एक अज्ञान के कारण और एक भगवान की इच्छा के कारण, क्योंकि भगवान ने ही अपना ये अवतार जो है वो छुपा के रखा है, सब लोगों को प्रकट नहीं किया है। लोगों के लिए वो भक्त बनकर आए थे, लेकिन बहुत प्राइवेट जगह पर गुप्त रूप में उन्होंने अपना जो दिव्य दर्शन है वो सब लोगों को दिया। और वो ऐसे नहीं कि केवल मैं कृष्ण हूं तो कृष्ण का ही दर्शन सबको दिया, उन्होंने किसी को राधा कृष्ण का दर्शन दिखाया, किसी को कृष्ण बलराम दिखाया, किसी को षडभुज दिखाया, किसी को क्या दिखाया, किसी को राम लक्ष्मण सीता का दर्शन दिया, हर प्रकार का दर्शन, किसी को वराह रूप का दर्शन दिया, किसी को नरसिंह भगवान का दर्शन दिया, किसी को क्या दिया, जैसा जैसा जिसका जिसका भाव था भगवान के प्रति वैसा वैसा दर्शन दिया। ऐसा आज तक भगवान की किसी अवतार ने नहीं किया है। तुम सुना है अपने प्रभु रामचंद्र ने अनेक प्रकार के रूप दिखाए, केवल परशुराम जी को एक बार विष्णु का स्वरूप दिखाया था जब वो चैलेंज करने आए थे, लेकिन विष्णु का रूप भी दिखाया, फिर राम का भी रूप दिखाया, फिर नरसिंह का भी दिखाया, फिर वराह रूप का भी दिखाया, ऐसा नहीं हुआ है कभी। तो चैतन्य महाप्रभु ये भगवान का एक विशेष अवतार है। क्यों आए वो, उसकी कहानी ऐसी, बहुत सारी कहानियां उसकी, एक कहानी बताऊंगा आपको। नारद मुनि द्वारका में गए भगवान को मिलने के लिए, जब भगवान यहाँ पर द्वारका में अवतारित होकर पृथ्वी पर वृंदावन में, ब्रज में, गोकुल में, उसके बाद हस्तिनापुर मथुरा द्वारका में निवास कर रहे थे, तो नारद मुनि उनको मिलने गए। तो नारद मुनि जब गए तो वो सत्यभामा के कक्ष में थे महल में, और वहां से उन्होंने खबर भेज दी कि मैं उसके बाद में रुक्मिणी के महल में जाऊंगा। तो रुक्मिणी के महल में गए, रुक्मिणी ने बहुत सत्कार किया, उनका स्वागत किया, और वो बैठकर बातें कर ही रहे थे, उसमें नारद मुनि आ गए। तो तुरंत नारद मुनि का सत्कार किया उन्होंने, अपने सिंहासन पे बिठाया, चरण धोए, गीत गाए, आरती उतारी, उनकी आशीर्वाद लिया उनका, और पूछा कि नारद मुनि महोदय गुरुवर, भगवान अपने भक्तों को अपना गुरु मानते हैं, उनके चरण धोते, अपने पीताम्बर से उनके चरण पोछते, कैसे आना हुआ। तो उतने में उन्होंने कहा कि हमने सुना है कि आप जा रहे हैं अभी, अपना लीला समाप्त करके पृथ्वी लोग छोड़कर जाने वाले हैं, इसलिए बड़ा दुख हो रहा है कि आप जाएंगे तो कैसे होगा दुनिया का। आप है तो धर्म चल रहा है अच्छी तरह से, धर्म की वृद्धि हो रही है, धर्म की स्थापना हो रही है, धर्म की वृद्धि हो रही है, अधर्म का नाश हो रहा है। और देख रहा हूं कि आपके होते हुए भी जाने का समय आ गया आपका, तो बहुत लोग अभी पाप प्रवृत्ति में बढ़ रहे हैं, हाँ काम वासना बढ़ रही है, लोग चीटिंग करने लगे हैं, लोग गलत व्यवहार करने लगे हैं, तो आप जाएंगे तो कैसे होगा। और रुक्मिणी रोने लगी, भगवान ने कहा रुक्मिणी आप क्यों रो रही हो, तो कहते मेरे रोने का कारण राधा रानी जानती। अभी एक अद्भुत आंसर दिया उन्होंने, और चकराने वाला आंसर दे दिया। अभी राधा रानी कहां पर बैठी है, वृंदावन धाम में, ये कहां बैठे हैं द्वारका में अपने महल में, और वहां पर वो उनका रेफरेंस दे रही है, संदर्भ दे रही है कि वो जानती है कि मैं क्यों रो रही हूं। एक कारण तो ये है कि आप जा रहे हैं। तो वहां से नारद मुनि निकले और ना वैकुंठ में गए, वहां पर एक दिव्य वैकुंठ है, उसका नाम है श्वेत द्वीप। उसमें उन्होंने देखा कि एक अद्भुत भगवान का रूप है जो गौर वर्ण का है, पीतांबर धारण किया हुआ है, बहुत सुंदर रूप है उनका। उसमें वो रूप वहां पर विराजमान है श्वेत द्वीप में, और उसमें उसका उस रूप का उस भगवान का द्वारका की पत्नियां और वृंदावन की गोपियां अभिषेक कर रही। नारद मुनि को दंग रह जाते, अरे ये क्या अद्भुत है। तो पूछते महा भगवान ये क्या रहस्य है आपका, ये क्या रूप है। तो उस समय वो जो भगवान का रूप था जो स्वयं कृष्ण है लेकिन गौर वर्ण के, सांवले वर्ण के नहीं, वो कह रहे हैं कि मैं भी बहुत जल्दी आने वाला हूं, क्योंकि कलयुग में बहुत ज्यादा लोग पाप करने वाले हैं, वो ज्यादा लोग अज्ञानी होने वाले हैं, बुद्धू हैं नंबर वन के, मूर्ख हैं, आलसी हैं, इसलिए मैं आ रहा हूं उन सब का उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनसे मैं कुछ अपेक्षा नहीं कर सकता कि वो बड़े ज्ञानी होंगे, कलयुग के लोग बड़ी तपस्या कर सकेंगे, कलयुग के लोग बहुत सद्वर्तनी होंगे, कलयुग के लोग सच बोलने वाले होंगे, कलयुग के लोग बहुत उत्साही होंगे, ऐसे ही उनसे मैं अपेक्षा नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ कलयुग के लोग आलसी होंगे, अज्ञानी होंगे, मंद बुद्धि होंगे, उनका भाग्य ही बहुत मंद होगा, बैड लक उनके जीवन में प्रधान होगा, झगड़ा करते रहेंगे हमेशा, बात बात पर दिखावा करेंगे, बात बात पर झगड़े करेंगे। तो ये उनकी भयंकर अवस्था देखकर मैंने सोचा अभी इनके लिए ऐसा रूप धारण किया जाए और ऐसा कुछ नुकसान निकाला जाए उनके लिए कि वो उनके लिए बहुत आसान हो जाए, बिना कुछ मेहनत किए हुए वो वही प्राप्त कर सकेंगे जो बाकी के लोगों में संत लोगों ने प्राप्त किया था। जैसे सत्यलोक चतुर्थ युग में तपस्या करके ध्यान करके प्राप्त हुआ था वही प्राप्त हो जाए, जैसे त्रेता युग में यज्ञ करके प्राप्त होता था परम उच्च प्राप्ति वो भी हो जाए, जैसे द्वापर युग में मंदिरों में भगवान के विग्रहों की पूजा करके जो परम सिद्धियां प्राप्त हुई थी वही प्राप्त हो जाए, ये और ये तीनों युग में ये तीनों कार्य करने के बाद भी और प्राप्त नहीं हुआ था ऐसा भी चीज प्राप्त होना चाहिए, ये मेरा विचार है। तो उन्होंने उस समय तुरंत देवताओं को बुला लिया नारद मुनि के सामने, और नारद मुनि समेत सभी देवताओं को आदेश दे दिया, आप चले जाओ बंगाल में चले जाओ, मैं आ रहा हूं, मैं अवतार लेने वाला हूं चैतन्य महाप्रभु के रूप में। नारद मुनि को भी आदेश दिया तुम मेरे एक सखा बनो श्रीवास पंडित। फिर महाविष्णु भी आए वहां से, कहां से, कारण सागर से, उनको कहा कि आप अद्वैत आचार्य बन जाओ। तो उन्होंने कहा कि आप ना नारद मुनि जी आप जाइए बलराम जी को विनती कीजिए कि आप भी आइए हमारे साथ। तो नारद मुनि गए हैं बलराम जी के पास, उन्होंने विनती किया है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण आपके बड़े भाई हैं जो आपको विनती कर रहे हैं कि आप भी आइए। तो बड़े आनंद से नित्यानंद प्रभु ने बलराम जी ने कहा कि मैं भी आऊंगा नित्यानंद रूप बन कर आऊंगा, फिर चैतन्य महाप्रभु बन कर आएंगे मैं नित्यानंद रूप। फिर चैतन्य महाप्रभु ने उनको ये भी आदेश दिया था नारद मुनि को, ये भी कहा बताया था कि मैं क्या करूंगा, मैं गौलोक धाम जो भगवान का सर्वोच्च धाम है, इसको हम परम वैकुंठ कहते हैं। आमतौर पर लोग केवल एक वैकुंठ जानते हैं कि वैकुंठ वैकुंठ, लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक वैकुंठ नहीं है, ऐसे अनंत वैकुंठ है। उसमें एक परम वैकुंठ है जिसको हम गौलोक धाम कहते हैं, और परम वैकुंठ के बीच में भी दो तीन वैकुंठ है जिसको हम द्वारका अयोध्या मथुरा कहते हैं। हाईली स्पेशलाइज मतलब बहुत उन्नत और उन्नत और उन्नत, और उसके सबसे आगे एक परम परम वैकुंठ है जिसको गोलोक वृंदावन कहते हैं। तो वो गोलोक वृंदावन का सबसे बड़ा धन क्या है, वो है प्रेम। हम लोगों को यहां पर इतना पता नहीं चलता है, सब लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं, सबको लगता है कि पैसा ही सबसे बड़ा धन है, सबसे बड़ी पूंजी जो है वो पैसे है, पैसे है सब कुछ है, हाँ ऐसे लगता है। लेकिन वो पैसे है सब कुछ है समझने के बाद भी वो पैसे से कभी भी किसी को आनंद नहीं मिलता है, एक बड़े आश्चर्य की बात है। सब लोग उसके पीछे भाग रहे हैं, सब लोग उसको ही सर्वस्व मानते हैं, सब लोग उसको ही मूल्यवान मानते हैं, उसको ही कीमत देते हैं, वही जीवन का उद्देश्य समझते हैं। लेकिन वो प्राप्त करने के बाद जो आत्मा का आनंद का अनुभव होना चाहिए ना, वो उनको नहीं होता है, ये बड़ी विचित्र बात है। तो उस धन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं जो यहाँ पर रुपये के रूप में जानते हैं, अमेरिका में डॉलर के रूप में जानते हैं और इंग्लैंड में पाउंड के रूप में जानते हैं, उस धन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। हम उस धन की बात कर रहे हैं जो केवल आत्मा के साथ संबंधित है, इसका नाम प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम, निस्पृह प्रेम, निरपेक्ष प्रेम। वो प्रेम भगवान के गौलोक धाम का एक विशेष ऐश्वर्य है जिसके सामने बाकी सारे ऐश्वर्य तुच्छ हो जाते। वो जो दिव्य प्रेम है भगवान का अपने भक्तों के प्रति, अपनी प्रजा के प्रति, सभी जीवों के प्रति, जो उनका अनंत प्रेम है, जो खास करके उनके आदान प्रदान के रूप में भक्तों के बीच में होता है, वो जो दिव्य प्रेम है ना, इसमें कोई स्वार्थ नहीं है। वो प्रेम उन्होंने कहा कि मैं हरे कृष्ण महामंत्र के रूप में वो प्रेम उसमें डालकर, जैसे हम लोग दवा होते हैं, दवा डॉक्टर लोग क्या करते हैं, दवाई लेते हैं, उसको कैप्सूल में बंद कर, वो कंपनी में दवाई होती है वो कैप्सूल डालते हैं 50 मिलीग्राम 100 मिलीग्राम 500 मिलीग्राम और उसको फिर पैक करते हैं और आपको देते हैं। आपके लिए उसका दवाई ढूंढने का जरूरत नहीं है, बराबर कैप्सूल में आपको कड़वा ना लगे उसको डाल के दिया है, आप मुंह में डालेंगे तो इधर पेट में ही खुलेगा वो। वैसे पूरा गौलोक धाम का जो प्रेम है उसका सार जो है, वो सार उन्होंने हरे कृष्ण महामंत्र के 16 अक्षरी मंत्र में एक कैप्सूल की तरह भर दिया प्रेम, और कहा कि वो महामंत्र जो प्रेम से भरा हुआ है, वो गौलोक का प्रेम महामंत्र के रूप में लेकर मैं आऊंगा और गांव गांव में, शहर शहर में, रस्ते में, घर के बाहर, अंदर बाहर, खुली जगह पे, पर्वत पे, जहां पर भी जगह हो उस सब जगह पर मैं इस महामंत्र के कीर्तन को बांटूंगा, इसका वितरण करूंगा। और जैसे कि बाढ़ आ जाएगी पूरे भौतिक दुनिया में, इस तरह से मैं ये भगवान का नाम जो है ना सबको बांट दूंगा। और जो प्राप्ति सत्ययुग में संतों को ध्यान करके नहीं हुई, वो मैं इस कलयुग में लोगों को उससे भी बढ़कर प्राप्ति दूंगा। त्रेता युग में यज्ञ करके नहीं मिली, द्वापर में भगवान के मंदिरों की पूजा नहीं करके मिली, उससे भी बढ़कर जो प्राप्ति है वो मैं इस कलयुग के लोगों को केवल भगवान के नाम का कीर्तन करके दूंगा। तो आप सोचेंगे तो ऐसी क्या प्राप्ति है जो बाकी युग में नहीं होती है, 60,000 साल तप करने के बाद भी नहीं मिल सकती है, हाँ यज्ञ राजसूय अश्वमेधरा गो में तो यज्ञ करके भी नहीं हो सकती, जो कई साल तक एक एक यज्ञ चलता है उसका, ऐसी क्या प्राप्ति है वो। तो बोलेंगे मोक्ष चाहिए, जन्म मृत्यु से मुक्ति चाहिए, वैकुंठवासी बनना चाहिए, वापस इस शरीर को धारण करके दुख भोगने के लिए आना नहीं चाहिए, तो इससे बड़ी प्राप्ति क्या हो सकती है। इससे बड़ी भी प्राप्ति है, इसको प्रेम कहते हैं। भगवान आपसे, अगर आपने मुक्ति प्राप्त कर लिया ना, भगवान आपसे इंप्रेस नहीं होते, वो तो 0-0 है। अभी दुख भोग रहे तो दुख से मुक्त हो गए, आगे क्या उसके, है ना। यहां से एयरपोर्ट चले गए फिर क्या करना है, अरे वहां से फ्लाइट पकड़ना है और कौन से देश में जाना है वो तय करना है, वहां का टिकट होना चाहिए, फिर एयरपोर्ट से पहुंचने के बाद में वो देश में पहुंचेंगे तब आप सोच सकते कहां पहुंच गए उधर। लेकिन खाली आप टैक्सी पकड़ के सामान लेके एयरपोर्ट पहुंच गए और वहां पहुंच बैठ के सोचते कहां जाना है, तो आप लोग क्या बोलेंगे, वो आपको सिक्योरिटी पूछेगा क्या कौन सा टिकट है, पता नहीं टिकट तो है नहीं, फिर आप यहाँ पर क्यों आए, पता नहीं क्यों आए लेकिन आए जरूर। तो लोग क्या बोलेंगे, कोई पागल आया है, इसको बाजू में करो, इसके पास टिकट नहीं है, इसके पास वीजा नहीं है, कुछ नहीं है, खाली एयरपोर्ट में आया वो टैक्सी पकड़ के। मुक्ति कुछ इसी प्रकार की है, आप अपना घरदार छोड़कर टैक्सी पकड़ कर एक जगह पर आ गए हो, लेकिन आपको पता नहीं कि वो जगह का महत्व क्या है, कि वहां से कोई फ्लाइट पकड़नी होती है, जहां से कहीं जाना होता है तो 10,000 मील दूर भी हो सकता है, 5,000 मील दूर भी हो सकता है, तो 3 घंटे की फ्लाइट भी हो सकती है, तो 16 घंटे की फ्लाइट भी हो सकती है, 20 घंटे की फ्लाइट भी हो सकती है, लेकिन वो वहां से पकड़नी है। तो मुक्ति यानी एयरपोर्ट तक पहुंच जाना, और प्रेम यानी अपने स्थान पर पहुंचना जहां पर हमको जाना है, वहां की जानकारी होना, वहां का टिकट होना, वहां का वीजा होना, वहां जाने की योग्यता होना, परमिशन होना, और टाइम पे पहुंचना फ्लाइट के लिए, और फ्लाइट पकड़ना और बैठ जाना उसके अंदर, फिर आप पहुंच जाएंगे। वो है प्रेम। तो प्रेम की प्राप्ति जो है वो मुक्ति से भी अनंत गुना बढ़कर है, सब लोगों को पता होना चाहिए। आम जनता क्या बोलते हैं, मोक्ष 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 होना चाहिए, मुक्ति होना चाहिए, मृत्यु के बाद दोबारा दुनिया में नहीं आना चाहिए, ऐसा लोग बहुत लोग जानते हैं भारत में, बड़ी भाग्य की बात है, विदेश में तो इतना भी पता नहीं लोगों, लेकिन भारत में लोग जानते हैं कि मोक्ष होना चाहिए, मोक्ष क्या चीज है लोग जानते हैं। लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु ने जब कृष्ण भगवान ने इस रूप में अवतार लिया और हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन को लोगों को वितरित किया, तो हम लोगों को समझाया कि मुक्ति मुक्ति ही कोई अंतिम चीज नहीं है, उसके बाद भी लोग वापस गिर सकते हैं यहाँ पर, मुक्ति को अंतिम गंतव्य स्थान नहीं है, मुक्ति कोई अंतिम प्राप्ति नहीं है, मुक्ति एक स्टेज है। जैसे हमारे लाइफ में 12th हम लोग बोल के ना 12th में 12th पहुंच गए, 12th पास हो गया, बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम पास हो गया, लेकिन 12th के बाद में तय करना है कि डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है कि और कोई कोर्स करना है, कि आर्किटेक्ट बनना है कि कोई मोटरमैन बनना है कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बनना है, वो तय करने का साल है। 12th पास किया मतलब बड़ी एग्जाम पास किया, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सब कुछ प्राप्ति हो गया उसके बाद, वो तो शुरुआत है एक प्रकार की, लेकिन उसी का हम अंत समझते हैं। तो मुक्ति भी एक प्रकार की शुरुआत है, मुक्ति आगे की यात्रा की शुरुआत है, प्रेम की यात्रा की शुरुआत है। अगर करना चाहो तो वो यात्रा कर सकते हैं, नहीं तो फिर वो आदमी दुखी हो जाएगा तो वापस आ जाएगा शरीर धारण करके यहाँ पर कुछ सेवा करने के लिए। इस शास्त्र में लिखा है कि मुक्ति प्राप्त करने के बाद भी जीव दोबारा दुनिया में आता है शरीर धारण करके, क्योंकि उसका तृप्ति नहीं होता है, कुछ सेवा करना है उसको, लेकिन प्रेम प्राप्त करने के बाद लौट के नहीं आता है, क्योंकि प्रेम प्राप्त करने के बाद प्रेम पूर्ण सेवा करने के लिए गौलोक धाम में व्यवस्था है आपके लिए। वहां पर हम जाकर भगवान के गौलोक धाम में प्रेम प्राप्त करने के बाद प्रेम भरा निरपेक्ष सेवा भगवान की कर सकते हैं और परमानेंटली वहीं रह सकते हैं, दोबारा यहां आने का मोह नहीं होगा आपको, यू विल नॉट गेट टेम्पटेड, कोई मोह नहीं होगा आपको कि बोर हो रहा है भगवान के धाम में, वापस जाके कुछ हॉस्पिटल खोलते हैं या कुछ धर्मशाला खोलते हैं सेवा करते हैं। इसलिए कलयुग में इतने सारे अनंत दोष हैं, जितने कुछ मैंने बताया आपको शुरू से, पूरा वर्णन मैंने भी किया, लेकिन भागवत जी में लिखा है कि कलयुग दोषों का सागर है, तो 10-15-20 दोष नहीं है उसके अंदर, दोषों का सागर है जो अथाह है और इतना गहरा है कि उसकी तल भी किसको मालूम नहीं पड़ेगा कितना है। लेकिन विशेष आश्चर्य की बात यह है कि कलयुग अनंत दोषों का सागर होने पर भी संत लोग जो सत्ययुग के हैं, त्रेतायुग के हैं और द्वापर युग के संत हैं, महान महान संत हैं, उनका वर्णन भागवत में आया है, वो सारे संत मिलकर कलयुग की पूजा करते हैं। आप बोलेंगे क्या पागल हो गए क्या, वो इतने दोष से भरा हुआ समय का पूजा करते हो, क्योंकि अस्ति एको महान गुणा कलयुग दोषे देव राजन, अस्ति एको महान, उसमें एक ऐसा गुण है जो उस एक गुण के वजह से ये सारे दोष भी दुर्लक्ष करने योग्य हो जाए, कोई बात नहीं चलता है, ऐसा विचार करने लायक वो गुण है। तो कौन सा गुण है, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम रजे, कि ऐसा गुण है कलयुग के अंदर कि एक भगवान के नाम का कीर्तन करने से जीव जो है वो सारे जंजाल से बड़ी सहजता से और बड़ी जल्दी मुक्त हो जाएगा। मुक्त संग परम रजे, केवल मुक्ति प्राप्त नहीं करेगा, परम ब्रज यानी परम गति को प्राप्त करेगा, परम धाम को प्राप्त करेगा, परम सेवा को प्राप्त करेगा, भगवान का नित्य सानिध्य प्राप्त करेगा। ऐसा प्राप्ति ना सत्ययुग में है ध्यान करके, ना त्रेता युग में यज्ञ करके है, और ना भगवान के द्वापर युग में मंदिरों की पूजा करके। अलग अलग प्रकार की प्राप्तियां बताई गई। कलयुग के अंदर जो प्राप्ति बताई गई है वो किसी भी युग के अंदर नहीं बताई गई, इसलिए हमको ये समझना जरूरी है कि ये जब भगवान तय करते हैं कि मैं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आऊंगा और भगवान के नाम का वितरण करूंगा, तो ये कितने बड़े भाग्य की बात है ये समझना इतना आसान नहीं है। क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आपके लिए हमने 10 करोड़ रुपए रखे हैं, लेकिन वो चर्च गेट में इरोस थिएटर के पास एक ऑफिस है, उधर आपको 1 रुपए का नोट और ये कूपन मैं दे रहा हूँ, तो आपको 1 रुपये मिलेगा। मेरे पास एक कूपन है जो आपको 1 रुपये देकर खरीदना होगा, और वो कूपन अगर आप यहाँ से जाकर इरोस थिएटर के पास जो ऑफिस है उसका एड्रेस है वहाँ पर एक कूपन दिखाओगे 1 रुपये वाला, तो आपको 10 करोड़ रुपया मिलेगी। तो सबसे पहले हमारे आजकल के लोग तो विश्वास ही नहीं करेंगे, बोला बकवास की बात, कौन देगा। लेकिन विश्वास कर भी लिया और समझो वहां पर पहुंच गए और आपको 10 करोड़ रुपये मिल गया, हो सकता है आप पागल हो जाएंगे, विश्वास ही नहीं करेंगे। अरे ये भी हो सकता है 1 रुपये के कूपन के ऊपर 10 करोड़ रुपया मिल रहा है, तो थोड़ा सा ना बुद्धि बोल दी कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसे ही ये जो उदाहरण मैंने दिया ना आपको, ऐसे ही कुछ कलयुग में हो रहा है। जो सत्ययुग में हजारों साल तपस्या करके प्राप्त नहीं हो सकता है, वो कलयुग में केवल भगवान का नाम लेकर प्राप्त हो सकता है। क्यों ऐसे भगवान ने किया है? ये भगवान की बड़ी कृपा है, ये भगवान की इच्छा है अपने आप में। कृष्ण के रूप में जब आए तो वो कहते हैं सर्वधर्मम परित्यज मामेकम शरणम रज, फिर मैं आपको पाप की मुक्ति करा दूंगा, आप शरण में आ जाओ मेरे। लेकिन ऐसा नहीं बोला कि आपको मैं पाप से मुक्त करके आपको प्रेम दूंगा, ऐसा नहीं बोला। पहले शरण में आ जाओ, सब कुछ 100% छोड़ के मेरे चरणों में आ जाओ, फिर भी प्रेम की बात नहीं करते। लेकिन कलयुग में वही भगवान जब रूप बदल के आते हैं तो सब जीवों को, जो शरण में आया है नहीं आया है, पात्र है नहीं पात्र है, वो जगह योग्य है कि नहीं है, कि अमेरिका का देश है कि भारत का देश है, कि तीर्थस्थान है कि गंदा जगह है, सब जगह पर जो मिलेगा उसको वो देते हैं और उसको वो कृपा कर देते हैं उसके ऊपर। ये भगवान का जो व्यक्तित्व है ना, उसके अंदर एक अनंत करुणा का एक अंग है, जो सत्ययुग में द्वापर में त्रेता में इतना प्रकट नहीं होता है, लेकिन पूरी तरह से वो अंग जो है वो कलयुग में प्रकट होता है करुणा वाला। तो वो है चैतन्य महाप्रभु, वो है गौरांग महाप्रभु। ये उनकी पहचान करने के लिए आपको मैंने बताया। किस व्यक्ति की आज हम जन्म उत्सव लीला अवतार उत्सव मना रहे हैं, उसका नाम चैतन्य महाप्रभु। उनका और एक नाम गौरांग महाप्रभु है, क्योंकि उनका वर्ण गौर है, स्वर्ण रंग का वर्ण है उनका, और कोई शस्त्र अस्त्र लेकर नहीं आए हो, उनके साथी जो है, उनके भक्त जो है, वही उनका शस्त्र अस्त्र है। और यही शस्त्र है मृदंग, करताल, हारमोनियम, और कोई मुरली बजाते हैं, कोई और बजाते हैं, संतूर बजाते हैं, लेकिन वो उनके अस्त्र है। और कोई धनुष चक्र वगैरह लेकर नहीं आए, और विशेष बात है किसी का वध भी नहीं करते हो, और राम के रूप में आए तो रावण कुंभकर्ण का सबका वध करा दिया उन्होंने, कृष्ण भगवान आए तो पता नहीं कितने लोगों का वध किया, आप गिनते जाओ भागवत में, जब से आए तब चालू किया अपना काम, 6 दिन के नहीं हुए चालू हो गया, 6 दिन के हो गए, 3 महीने के हो गए, 1 साल के हो गए, वध करना चालू। पहले कुछ साल बिना शस्त्र के, उसके बाद वृंदावन के बाहर गए शस्त्र लेके, कभी गदा से, कभी धनुष से, कभी बाण से, कभी कुछ से, कभी कुछ से, कभी सुदर्शन चक्र से, सब डरते थे चक्र का नाम लेकर, जब टूटता है ना बाप रे, कोई काट नहीं सकता है शस्त्र को। ऐसे भगवान हर युग में हर अवतार में राक्षस को मारते हैं, भयंकर से भयंकर राक्षस को मारते हैं। लेकिन वही भगवान जो मार सकते हैं किसी को भी, वो कलयुग में राक्षसों का भी, राक्षस जैसे लोगों का भी वध नहीं करते, उनको भी भगवान का नाम देते हैं, उन पर भी कृपा करते हैं, उनको भी कहते हैं कि मैं आपको नहीं मारूंगा, आपके अंदर के राक्षसी प्रवृत्ति को मारूंगा। बाकी सब में प्रवृत्ति के साथ राक्षस को भी मार रहे हैं, ये युग में राक्षस को स्पेयर कर रहे हैं, उसके अंदर के राक्षसी प्रवृत्ति को मार रहे हैं और राक्षस को भक्त बना रहे हैं। ऐसे कभी हुआ है क्या? रावण भक्त बना क्या? कुंभकर्ण भक्त बना? हिरण्याक्ष बना? हिरण्यकशिपु भक्त बना? कोई नहीं भक्त बना, उनको मारना पड़ा। लेकिन इस अवतार में जो रावण कुंभकर्ण थे वो भी अवतार लेकर आए थे, जगाई मदाए, उनको पवित्र परम भक्त बनाया उन्होंने, प्रेम के अश्रु बहाए उनके आंखों से, इतनी कृपा की उन्होंने। इसलिए संत लोग कलयुग की पूजा, क्योंकि स्वर्ग लोकों में लाखों साल रहने के बाद में, सद्वर्तन करने के बाद में, ज्ञान प्राप्त करने के बाद में, तपस्या करने के बाद, ब्रह्मा लोक जैसे जन्म लोक सत्य लोक में तपस्या करने के बाद भी ये प्राप्ति नहीं होती है जो कलयुग में प्राप्ति होती है। इसलिए जितने भी देवता आज के तारीख में भी सातों स्वर्गों में निवास कर रहे हैं, उसमें तो जो देवता बुद्धिमान है, ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं, साक्षात्कार प्राप्त कर चुके हैं, वो सारे देवता लाइन में खड़े हैं कि कलयुग में तुम्हारे और हमारे घर के अंदर जन्म ले लें। अगर आप भगवान के नाम का जप करते हो और भगवान कृष्ण पर श्रद्धा रखते हो, उन्हीं को जीवन में आपने सर्वस्व बनाया है, तो आप लोगों के घर में जन्म लेने के लिए देवता लोग लाइन में खड़े हैं। अगर आपके घर में बेटी की शादी हुआ, बहू आ गई है बेटी की शादी में, या भाई बेटी कहीं शादी करके गई है, वैष्णव के घर पे शादी हुई है उसकी, तो जब वो बच्चे पैदा करने के लिए प्रयास करेंगे तो वहां पर देवता लोग लाइन में खड़े। क्यों खड़े? हम लोग तो देवता लोग जाना चाहते हैं, तो देवता लोग लाइन यहाँ क्यों लगा रहे हैं? तो गड़बड़ है मामला इसके अंदर। लेकिन गड़बड़ नहीं है, गड़बड़ हमारे अंदर है कि हम लोग यहाँ बैठकर वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वो बुद्धिमानी से वहां से आना चाहते हैं। तो वो जानते हैं वहां पर लाखों लाखों साल तपस्या, ज्ञान और सब कुछ करने के बाद भी वो प्राप्ति नहीं हो सकती है जो कलयुग में वैष्णवों के घर में जन्म लेकर 50-60-70 साल के अंदर अगर भगवान के नाम का जप लिया तो क्या प्राप्ति हो सकती है? वो उधर लाखों साल जन्म के अंदर भी देवता के रूप में प्राप्त नहीं हो सकती है। ये जिनको जानकारी हो गई है वो भक्त लोग, वैष्णव लोग, देवता लोग लाइन में खड़े हैं। ये विशेष बात है, इसको समझो आप। कलयुग में भक्तों के घर में आया हुआ जीव जन्म लेकर, साधारण जीव नहीं है वो, सारे देवता ही हैं, क्योंकि देवता लोग उतना बड़ा टाइम पास सहन नहीं करना चाहते लाखों सालों का। उनको 50-60-70 साल के अंदर कोई परम प्राप्ति होती रहे तो वो लाखों साल का जीवन छोड़कर यहाँ पर आएंगे। बदबू वाले शरीर में भी आ सकते हैं, तैयार है वो आने के लिए। वहां पर सुगंधी शरीर है, यहाँ पर बदबू वाला शरीर है। सब जगह बदबू है, मुंह में बदबू है, बॉडी में बदबू है, बालों में बदबू, सब जगह बदबू है। कुछ भी करो, कितना भी सेंट करो, ऐसे शरीर में भी देवता आने को तैयार है, क्योंकि उनको पता है कुछ ही साल के अंदर यहाँ पर प्रेम की प्राप्ति होगी। तो वो चैतन्य महाप्रभु है, उनका आज जन्मदिन। कृपा करके समझने का प्रयास करो, क्योंकि ये बहुत ही गहन विषय है, क्योंकि भगवान ने इसको छुपा के रखा है और केवल उन लोगों को बताया है जिन पर वो प्रेम करते हैं, और उन प्रेम करने वाले लोगों ने लिख के रखा है, इसलिए हमको मालूम पड़ता है और हमको भी प्रेम करने की प्रेरणा मिल रही। तो ये जब उधर द्वारका में भगवान ने बताया, उसके बाद नारद मुनि को बताया, ये सब देवता लोग बंगाल में अवतरित हुए। नंद महाराज कृष्ण भगवान के जो पिता हैं वो जगन्नाथ मिश्रा के रूप में प्रकट हुए, यशोदा माई सच्ची माता देवी के रूप में प्रकट हुई, नारद मुनि श्रीवास पंडित के रूप में प्रकट हुए, बलराम जी नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए। तो जगन्नाथ मिश्रा और सच्ची माता का विवाह हुआ और सच्ची माता के 9 लड़कियां हुई और एक के बाद 9 लड़कियां का देहांत हो गया। 10वीं बार प्रेग्नेंट हो गई सच्ची माता, तो बलराम जी का एक अंश प्रकट हुआ, उसका नाम था विश्वरूप। बड़े भक्त थे बड़े, वो बड़ी उनकी लंबी कथा है, बहुत सुंदर। उसके बाद 11वीं जब प्रेगनेंसी हुई, गर्भवती हो गई सच्ची माता, तो उसमें श्री कृष्ण भगवान अवतरित हुए गौरांग महाप्रभु के रूप में। 13 महीने तक गर्भवती रही। अभी आप लोग बोलेंगे 9 महीने फुल टर्म, 9 महीने हो गए पूरे, अभी तो होना चाहिए डिलीवरी, क्यों नहीं हो रहा है? अरे 9 के 10 भी हो गए फिर भी कुछ नहीं हो रहा है, अरे 10 के 11 भी हो गए कुछ भी नहीं हो रहा है। अभी हमारे मेडिकल साइंस में देखो आप, 9 महीने पूरे हो गए ना तो सब टेंशन में आ जाते हैं कि 9 महीने के पूरे होकर बच्चा नहीं आया बाहर तो अंदर मर जाएगा वो 8 दिन के अंदर, बचेगा नहीं, उसका टाइम हो गया। उसको या तो काट के निकालो या तो दवा दे के निकालो या तो दवा के निकालो, लेकिन वो अपने आप रहेगा अंदर तो खत्म हो जाएगा। तो इधर 10, 11, 12, 13 महीने हो गए, कुछ चिंता नहीं है और बालक घूम रहा है अंदर, सब कुछ नॉर्मल है। मतलब आज के जमाने अगर सोनोग्राफी करते तो बेबी नॉर्मल, अंदर का वेट नॉर्मल, मूवमेंट नॉर्मल, सब कुछ नॉर्मल, माता का बीपी नॉर्मल, शुगर नॉर्मल, सब नॉर्मल, तो प्रॉब्लम क्या है? तो वो सच्ची माता के पिताजी ना वो ज्योतिषकार थे, एस्ट्रोलॉजर, हाँ कुंडली देखने वाले थे। उनको बुलाया, मतलब पिताजी को बुलाया, लड़की के पिताजी को बुलाया, देखा बताओ इसको क्या प्रॉब्लम है। उन्होंने कुंडली लगाया और देखा कि ये जो बालक है ये एक ऐसे घड़ी का इंतजार कर रहे हैं। ये बालक इंतजार कर रहा है कि जिसमें जिस कारण के लिए वो आ रहा है वो कारण उसके जन्म के दिन ही जन्म के क्षण ही सफल हो जाए। सब लोग वेट कर रहे हैं और हम लोग अभी सोचते हैं ना कि अरे अगर सुजरित करना है ना तो कोई अच्छा नक्षत्र अच्छी तिथि अच्छा वरण अच्छा योग अच्छा करण सब होना चाहिए। पुष्टिकरण और सारा चीज है वो गणित होता है वो गणित करके मुहूर्त निकाल देंगे ये मुहूर्त निकालेंगे तो जन्म के लिए अच्छा है। तो ऐसा दिन आया चंद्र ग्रहण का। अभी आप में से कोई लोग अपने बच्चे को जन्म देना चाहोगे चंद्र ग्रहण के दिन? चंद्र ग्रहण चल रहा है आकाश में पूरा, सब लोग घर में बैठ के भजन कर रहे हैं और आपका अगर वाइफ का या माँ बहन का डिलीवरी हो रहा है तो वो अगर बाप रे आज के दिन भी क्यों होना था, डॉक्टर साहब पोस्टपोन करो इसको, कुछ दवाई दो कल तक रोको इसको, ग्रहण तो कम से कम छूटने दो। लेकिन जैसे ही चंद्र ग्रहण पूर्णतः प्रकट हो गया चंद्र पूरा ग्रसित हो गया उस समय क्या हो गया? उस समय बंगाल में जहां पर इनका घर था ना नवद्वीप कहते हैं नदिया डिस्ट्रिक्ट उस जगह गंगा नदी बहती है तो जितने भी हजारों लाखों लोग हैं जितने भी गांव है जितने भी शहर है जितने भी टाउनशिप है और जितने भी लोग हैं वो सब लोग गंगा के अंदर डूबे हुए हैं यहाँ तक और सब लोग भजन कर रहे हैं गोविंद गोपाल विष्णु गोविंद गोपाल नरसिम्हा वामन पुकार रहे हैं अपने अपने तरह से भगवान का नाम पुकार रहे हैं। और वो पूरा मतलब ग्रहण का कोई परिणाम अपने ऊपर नहीं होना चाहिए इसलिए गले तक डुबा दिया है केवल मुंह खुला रखा है और मुंह पे मुंह से केवल आंख बंद करके विष्णु का नाम ले रहे पुकार रहे हरी हरी बोलो हरी हरी। उस समय जिसको सबसे अशुभ घड़ी कहते हैं उस समय इनका जन्म हो गया। उस समय और एक घटना हो गई जितने लोग यवन थे ना हिंदू लोग सब लोग भगवान के नाम का जप कर रहे हैं और जो हिंदू नहीं है वो सब लोग भगवान के नाम के पुकारने वालों को चिढ़ा रहे हैं और वो भी बोल रहे हैं चिढ़ा चिढ़ा के भगवान का नाम बोल रहे हैं जो ये सब लोग बोल रहे हैं। अभी आप देखो आप आपके पास नदी है जो बाजू में निर्मल सरोवर है समझो पूरा भरा हुआ है सरोवर सब लोग उसमें अंदर डूबे हुए यहाँ तक और सब लोग भगवान का नाम पुकार रहे हैं जगह ही नहीं आने के लिए तो बाकी लोग बोल रहे हैं क्या पागल लोग हैं सब लोग नदी में डूबा कर क्या पुकार रहे हैं तो उनको चिढ़ा रहे हैं। इसका मतलब श्रद्धा से बोलने वाले भी पुकार रहे हैं और चिढ़ाने वाले भी पुकार रहे हैं लेकिन पुकार रहे हैं एक ही नाम हरि हरि। ऐसे समय पर ये बालक ने जन्म लिया तो क्या दिखा दिया आपको कि मैं आया ही हूं सब लोगों को मेरा नाम देने के लिए। बिना कुछ किए इस बालक ने ऐसा चमत्कार किया। अभी छोटा बालक के अंदर क्या शक्ति होगी अभी जन्म ही ले रहा है वो जन्म लेते ही पूरे दुनिया को भगवान के नाम के जप में डुबा दिया और ये ऐलान दिया सूचना किया कि यही करने के लिए मैं आ रहा हूं। तो वो है उनका जन्म जो है वो नीम के पेड़ के नीचे इसलिए उनका नाम रखा गया नीमाई। इसका और एक कारण है क्योंकि नीम का पेड़ जो है ना वो राक्षस भूत प्रेत पिशाच को दूर कर देता है। इनके घर में 9 लड़कियां जो पहले गुजर चुकी थी ना तो वो नीम के नीम का नाम भी इतना पावरफुल है कि नीमाई नाम रख दिया कि नाम से ही इससे मृत्यु दूर रहेगा मतलब कोई अशुभता भूत प्रेत कोई बैड ओमेन अपशकुन सब दूर रहेगा इसलिए नाम रख दिया नीमाई। फिर वो नानाजी आए नीलांबर चक्रवर्ती अच्छी माता के पिताजी वो भी आए उन्होंने कुंडली उंडली बनाया उन्होंने कहा इसका नाम विश्वंबर रखते हैं क्योंकि ये विश्व का पालन करने का। सखियों ने कहा आज वो जो कि ये गौर वर्ण का इसको हम गौरांगा बोलेंगे ऐसे बहुत सारे नाम रखे गए। तो वही हमारी चैतन्य माँ तो ये नाम कब आया आगे जाकर उन्होंने संन्यास लिया विश्व का कल्याण करने के लिए। अभी वो 17 खंड में उसका चरितामृत का वर्णन किया गया है वो 1 खंड में कैसे करेंगे लेकिन ये गौरांग महाप्रभु उसके लिए आए हैं सब लोगों को भगवान का नाम देने के लिए अपना नाम देने के लिए। क्योंकि भगवान को अगर किसी को भक्ति सिखानी है तो उनके अलावा कौन सबसे बढ़िया भक्ति सिखा सकता है बेस्ट टीचर कौन हो सकता है कि उनकी भक्ति कैसे की जाए। तो वो खुद ही भक्त बनकर आते हैं और हम सब लोगों को सिखाते हैं कि कैसे उनकी भक्ति की जानी चाहिए बेस्ट तरीके से। और वो भगवान है चैतन्य महाप्रभु। विशेषता क्या है किसी पर उन्होंने दंड नहीं दिया किसी को किसी पर आतंक नहीं किया, किसी को वध नहीं किया, सबको प्रेम बांटा सबको, और जितना अधिक पापी जीव था वो सबसे अधिक पापी जीव को सबसे अधिक प्रेम दिया। दीना ही ना याता चीलो हरिनामा उद्धारे लो तारा नाम साक्षी जगाई मदाई। ये चैतन्य महाप्रभु कृपा ऐसी है कि सबसे पापी सबसे पतित जो जीव है उसको उन्होंने प्रेम बरसाया, उसके ऊपर सब पाप छीन लिया, उनका शुद्ध कर दिया उनको, और प्रेम से ओत प्रोत कर दिया, भय बहा दिया प्रेम में। ठीक तत्क्षण प्रेम से रोने लगे, वो निरपेक्ष निस्वार्थ होकर पवित्र होकर रोने लगे। ऐसा अद्भुत चमत्कार उन्होंने कई लोगों के जीवन में बताया, उसका अंदर का रहस्य क्या है वो भी आज बताना जरूरी है। क्यों उन्होंने निर्णय लिया कि मैं इस रूप में आना चाहता हूं? क्योंकि एक दिन वृंदावन में जब रास लीला कर रहे थे, तब सब गोपियों को गर्व हो गया कि वो सबको छोड़कर मेरे ही साथ नाच कर रहे हैं, मैं इतनी स्पेशल गोपी हूं कि सारे सुंदर सुंदर गोपियों को छोड़कर वो मेरे ही साथ नृत्य कर रहे हैं, सबको छोड़कर मुझ पर ही प्रेम कर रहे हैं, मुझे अटेंशन दे रहे हैं। लेकिन वो सबके साथ थे, आप जानते हो ना, सबके साथ में अनंत रूप धारण करके वो नृत्य कर रहे थे, लेकिन एक एक गोपी इतनी मग्न थी किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा था कि दूसरे के साथ भी है, वो इतनी अपने वाले कृष्ण के साथ मग्न थी कि बाकी को दिखाई नहीं पड़ रहा था। तो जब उनको ये गर्व हुआ, प्रत्येक गोपी को लगा कि मैं स्पेशल हूं, तो इतना सा गर्व गर्व शुरुआत हुई तो भगवान अंतर्धान हो गए, अदृश्य हो गए, और सब गोपियां दूसरों को बताने लगी, पता है वो मेरे साथ थे, आप सबको छोड़कर मेरे साथ थे। तो दूसरी भी कहती कि अरे मेरे भी साथ थे, तीसरी कहती मेरे भी साथ थे, हजारों गोपियां कह रही मेरे भी साथ थे। तब उसको सबको ध्यान में आया कि अरे वो सबके साथ थे, मैं इतनी मूर्ख हूँ, हम लोग इतने मूर्ख हैं कि हमने बेकार का गर्व किया, और परिणाम क्या हुआ, वो चले गए, क्योंकि तो हमने गर्व किया तो वो छोड़ के चले गए, तो गर्व बिल्कुल अच्छा लगता है। भक्त कितना भी बड़ा हो लेकिन गर्व उसके अंदर आता है किसी बात का, भक्ति का भी अगर आता है तो भगवान को पसंद नहीं आता, भगवान तत्काल उसको छोड़ देते। और आप भक्त हो, आपके अंदर इतने बड़े गुण भी नहीं है, आप नए नए भक्त हो, लेकिन आप बहुत ही सिंसियर हो और आपके अंदर गर्व बिल्कुल नहीं है और बड़े नम्र हो, तो आपके नम्रता के सामने सारे गुण आपके अंदर डाल लेते हो। एक नम्रता की पावर इतनी इतनी होती है। तो जब ये चले गए, भगवान दुखी हो गए, अरे तो समय गवा दिया, इतना अच्छा मौका था। वो ढूंढने लगे, फिर रोने लगे, कहाँ गए भगवान, वो पेड़ों को पूछ रहे हैं, बच्चों को पूछ रहे हैं, वन्य देवता को पूछ रहे हैं, ग्राम में देवता को पूछ रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं, इसको पूछ रहे हैं, बच्चियों को पूछ रहे हैं, कीटकों को पूछ रहे हैं, किधर देखा हमने कन्हैया को, आपने देखा है क्या। तो वहां पर कृष्ण भगवान भी चले गए तो वो भी दुखी हो गए, क्योंकि वो तो भगवान ऐसे भगवान है कि गोपियों के संग छोड़कर थोड़े सुखी हो सकते हैं, तो गोपियों के संग छोड़ दिया तो उन्होंने बहुत दुख हो गए, वो दुखी हो गए। श्री गौरांग महाप्रभु की एक क्षण देख लीजिए उनको, आज उनका जन्मदिन है, हृदय से प्रार्थना भी कर लो। तो कृष्ण भगवान भी अकेले में भगवान गोपियों का विरह सहन नहीं कर सकते, तो यमुना किनारे एक पेड़ के नीचे बैठ गए, बड़े व्याकुल थे वो, उनको गर्व अच्छा लगता है, छोड़ के चले गए, लेकिन फिर भी व्याकुल थे राधा रानी गोपियों को छोड़कर। तो मुख से राधा राधा नाम जप रहे हैं, आंख बंद करके रखे हुए, आप कल्पना करो बड़ी विशाल सुंदर यमुना के किनारे पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं, आंख बंद है और मुख से राधा राधा पुकार रहे हैं, और हृदय में राधा रानी के दो चरणों का ध्यान कर रहे हैं, चरण द्वय। और ये जब करते हैं, मुख से राधा का नाम और मन में उनके चरणों का चिंतन, तो राधामय हो जाते हैं, ऐसे दिव्य आनंद का अनुभव करते हैं कि उनका रंग सांवला जो है वो गौर वर्ण हो जाता है, गोल्डन येलो हो जाता है। उनको पता नहीं है, वो तो आंख बंद करके बैठे हैं, आप देख रहे हो, और उसी जगह पर ये मग्न बैठे हुए हैं राधा नाम के जप का और राधा के ध्यान का जो दिव्य आनंद है उसका अनुभव कर रहे हैं, और यहां से गोरे हो गए पूरे, लेकिन आंख बंद करके बैठे ध्यानस्थ पूरे, एक तरह से राधा मय हो गए, कृष्ण के होने से भूल गए वो कि मैं कृष्ण हूं, ऐसे राधा ही हो गए, राधा मय हो गए। तो वहां से राधा रानी और गोपी आई और देखती है, अरे ये कौन व्यक्ति है, पीताम्बर पहना हुआ है, मोरपंख पहना हुआ है, सब तो कृष्ण जैसा है, लेकिन सांवला तो नहीं है ये, तो गोरा कैसे व्यक्ति है, ये रहस्य क्या है। आसपास कुछ कुछ करते हैं, चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं कौन है कौन है कौन है, तो राधा रानी को बोलते राधा रानी आप जाओ इनको स्पर्श करो और ये रहस्य का भेद करो कि कौन है ये व्यक्ति जो आज पहली बार ब्रज में दर्शन दे रहा है, तो सब कुछ कृष्ण जैसा है लेकिन वर्ण खाली बदली हो गया, इसका रंग बदल गया है, क्या रहस्य है आप उसका भेद करो, ताकि वो जाके स्पर्श करती है। स्पर्श करने से जो कृष्ण गौर वर्ण के हो गए हैं वो धीरे धीरे सांवले रंग के हो जाते हैं और धीरे से आंख खोलते हैं। वो कहते हैं क्यों तुमने मुझे बुलाया, मैं तो एक ऐसी दिव्य अवस्था में था जिस अवस्था के बाहर आने की मुझे बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, तुमने मुझे उस अंदर की अवस्था से बाहर खींच के लाया है, क्यों लाया तुमने। तो कहते कि हम तुम लोग हैरान हो गए थे, तुम सब गौर वर्ण के हो गए थे, क्या हुआ ऐसे आपको, ऐसे क्यों हुआ। तो मैंने कहा कि आपका ध्यान और आपका नाम लेते हुए आपकी तरह जब मैंने भजन किया तो मुझे ऐसी अनुभूति हुई कुछ क्षण के लिए कि मैं एकदम भाव विभोर हो गया, मदहोश हो गया, और इस समय मुझे लग रहा है कि मेरी वो अवस्था क्यों खंडित हो गई। नहीं, मुझे वो छोटे समय के लिए जो अनुभव मिला वो मुझे पूरा और विस्तार रूप में उसका अनुभव करना है, मेरा मन जो है ना वो अतृप्त है, मैंने ऐसी चीज का अनुभव किया है, मैं तो भगवान हूं, सब चीज मेरे में से निकलती है, सबका उगम मैं हूं, सब चीज का उगम मैं हूं, लेकिन आज वो मुझे ऐसी चीज प्राप्त हो गई है जो पहले कभी मेरे पास नहीं थी, सबका स्वामी मैं होने पर भी। तो मैं इस अद्भुत चीज जो आपके पास है मैं जानता हूं, क्योंकि आपका ही भाव लेकर मैंने चिंतन किया था तो मुझे अनुभव हुआ था, तो पहले कभी नहीं हुआ था, तो मैं अभी एक पूरा अवतार खर्च करूंगा इसके लिए, ये क्या रहस्य है, इसकी गहराई क्या है, इसकी चौड़ाई क्या है, इसका विस्तार क्या है, इसका महात्म्य क्या है, ये सब मैं अनुभव करना चाहूंगा, क्योंकि मैं भगवान होते हुए भी सब कुछ जानते हुए भी इस बात को नहीं जानता जिसका अनुभव आपको हो रहा है। तो वो फिर चैतन्य महाप्रभु बोल रहा है, राधा रानी ने कहा उनको अरे आप हमारा भाव लेकर आओगे तो आपकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाएगी, आप कहीं भी बेहोश होकर गिर सकते हो, पेड़ से गिर सकते हो, चलते हुए पत्थर में गिर सकते हो, कांटों में गिर सकते हो, बेहोश हो सकते हो, आपकी अवस्था आपके काबू में नहीं रहेगी, आप एकदम बेकाबू हो जाओगे, लेकिन वो आपको जब कष्ट होगा आप गिरते हुए तो मुझे दिखाने जाएगा, वो विचार करके भी मुझे कष्ट हो रहा है, इसलिए मैं अभी से बताती हूँ कि जब आप उस समय आओगे तब आपके शरीर को मेरे कांति से मैं ढक दूंगी, मेरे त्वचा से मैं आपको कवर कर दूंगी, ताकि आप गिरोगे तो भी मेरी त्वचा आपकी रक्षा करेगी, आपको जख्म नहीं होगा। तभी देखिए चैतन्य महाप्रभु कौन है तो कृष्ण, हृदय तो कृष्ण का है, स्वयं कृष्ण है, और भक्त के रूप में आए हैं, राधा रानी का भाव हृदय में लिया है और बाहर से राधा रानी की त्वचा उसको कवर कर रही है, ऐसा अद्भुत रूप मतलब चैतन्य महाप्रभु गौरांग महाप्रभु, उनका आज जन्मदिन है, गौर पूर्णिमा कहते हैं उसको, गौर पूर्णिमा क्यों, क्योंकि गौरांग महाप्रभु का जन्मदिन है और तिथि कौन सी है, फाल्गुन पूर्णिमा तिथि, पूर्ण चंद्रमा का दिन है आज, इस चंद्र उदय के समय उनका जन्म हुआ, और चंद्र ग्रहण कब होता है, जब पूर्णिमा होती है ना, तो पूर्ण चंद्रमा जब उदय होने वाला था तो उसको ग्रहण ने ग्रस्त कर लिया, उस समय उन्होंने जन्म लिया। मतलब क्या, एक ही बात आपको मैं समझाना चाहता हूं, जो सबसे अपवित्र काल माना गया है ग्रहण काल, अरे हम लोग भोजन भी नहीं करते, जो भोजन बनाया उसको फेंक देते, बाकी जो अचार वचार सब में तुलसी या तो गर्भ डाल के रखते हैं, क्या क्या करते हैं हम लोग, कीर्तन करते हैं, उपवास करते हैं, सोते नहीं है, बाहर जाते नहीं है, ऊपर देखते नहीं है आकाश में, कोई भी व्यवहारिक काम नहीं करते हैं, केवल भगवान के नाम का जप करते हैं, कितना अपने आप को ग्रहण के खराब परिणाम से बचाने के लिए क्या क्या करते हैं, दरवाजे पे वो कुशा गवत लगाते हैं, खिड़की पे लगा देते हैं, उस पे ही बैठते हैं, उपवास करते हैं, भगवान का नाम का जप करते हैं, रात को बीच में भी ग्रहण होता है तो रात को जगते हैं सब लोग, एकत्र होकर सब लोग भजन करते रहते हैं कि नींद ना आ जाए, क्योंकि नींद करने से ग्रहण का प्रभाव और ज्यादा होता है हमारे ऊपर सोने से। तो इतने अपवित्र काल के समय जल मेरा मतलब कितना अशुभ बना गया, लेकिन ये भगवान इतने चमत्कारी हैं, ये अवतार भगवान का, कि सबसे अपवित्र काल को सबसे पवित्र काल कर दिया, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आसमंत में, पूरे वातावरण में भगवान का नाम गुंजा दिया उन्होंने और बता दिया कि यही करने के लिए मैं आ रहा हूं। इसकी तो ये झलक है। कलयुग में जितनी भी अशुभ चीजें हैं, जितनी भी अपवित्र चीजें हैं, जितने भी अपशकुन हैं, जितने भी नहीं चाहिए ऐसी वस्तुएं हैं, वो सबको पवित्र करने के लिए मैं आया। जितने भी अपशकुन चेतनाएं हैं, खराब प्रवृत्तियां हैं, पाप प्रवृत्तियां हैं, जितने भी पाप विचार हैं, जितने भी पाप के गुण हैं, वो सबको मिटाने के लिए मैं आ रहा हूं। मेरे भगवान, मेरे महामंत्र के सामने और मेरे संकीर्तन के सामने कोई भी पाप प्रवृत्ति टिकेगी नहीं, सब जो भी है वो पवित्र हो जाएगा। जैसे अग्नि में सूखी हो या गिली हो, गंदी हो या अच्छी हो, सब चीज जलकर शुद्ध हो जाएगी। ऐसे है चैतन्य। और क्या कहते हैं वो, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण, बोलो कृष्ण करो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। कहते हैं केवल यही समझो आप, और कुछ समझने की जरूरत नहीं। तो कृष्ण आपके माता है, कृष्ण आपके पिता है, सखा है, बंधु है, आपके सब कुछ जो भी रिश्तेदार वही कृष्ण ही है, बाकी सब जो है वो भी है, लेकिन ये परम मित्र परम सखा परम माता परम पिता परम बंधु कृष्ण है। और करना क्या है, केवल कृष्ण का नाम लो, कृष्ण की सेवा करो, कृष्ण को जीवन को सर्वोच्च बनाओ। इतना करने से आपका सारा कष्ट मिट जाएगा और आप सब लोग भगवान के धाम में पहुंच जाएंगे। यही उनकी शिक्षा है। सब आसान कर दिया, ना तपस्या की आवश्यकता है, ना पंडित बनने की आवश्यकता है, ना कर्मकांड करने की आवश्यकता है, ना योग करने की आवश्यकता है, ना विरक्त बनने की आवश्यकता है, ना संन्यास लेने की आवश्यकता है, ना कुछ त्याग करने की आवश्यकता है, कुछ करने की जरूरत। भगवान नाम पे श्रद्धा रखो, उसी को जीवन का सर्वस्व बनाओ, उसी से ही सर्वोच्च प्राप्ति हो जाएगी। और एक विशेष बात है इस अवतार में, जब नरसिंह भगवान आते हैं तो नरसिंह भगवान के भक्त लोग उस अवतार के साथ जन्म लेते हैं। जब बराह भगवान आते हैं तो उनका एक सेट है भक्तों का, वो आते हैं। जब मत्स्य भगवान अवतार लेते हैं तो समुद्र में उनके एक भक्त लोग पैदा होते हैं, समुद्र कन्याएं हैं। जब वामन अवतार आता है तो उनके भक्त जन्म लेते हैं, उनका उनका सहायता करने, उनका एक ट्रूप है पूरा। राम भगवान तो राम दरबार पूरा लेके आते हैं, वानर सेना पूरा भरत शत्रुघ्न पूरे दरबार आता है उधर। कृष्ण भगवान सारी गोपियां सखाओं सबको लेकर आते हैं, लेकिन वो कृष्ण भगवान के भक्त होते हैं, उसमें प्रहलाद नहीं आते। तो हम आपको आए, कृष्ण भगवान का जब अवतार होता है पूर्ण पुरुषोत्तम का, उसमें प्रहलाद जी नहीं आते, तो केवल नरसिंह भगवान के अवतार नहीं आते। लेकिन जब श्री चैतन्य महाप्रभु आते हैं, जब वही कृष्ण भगवान गौरांग का महाप्रभु बनकर अवतार लेते हैं, तो नरसिंह भगवान के, वामन भगवान के, मत्स्य अवतार के, कुर्म अवतार के, वामन अवतार के और राम अवतार के और जितने बाकी हंस अवतार, जितने भी भगवान के अनंत संभवामी युगे युगे अवतार हुए हैं, वो सभी भगवान के सभी भक्त जो है वो सभी लोग अवतार लेते हैं। प्रहलाद जी ने अवतार लिया वासुदेव दत्त के रूप में, नारद उन्होंने अवतार लिया श्रीवास पंडित के रूप में, कौन कौन किसने किसने अवतार नहीं लिया, सभी भगवान के सभी अवतारों ने जन्म लिया। क्योंकि ये जो कृपा हो रही है वो बाकी किसी अवतार में नहीं हो रही है। मेरे प्रीष्ट भगवान तो नरसिंह भगवान है, लेकिन नरसिंह भगवान मेरे इष्ट होते हुए भी उन्होंने अपने नरसिंह के अवतार में ये कृपा नहीं की जो वही भगवान मेरे गौरांग महाप्रभु के रूप में आके करने वाले। इसलिए वो भी गौरांग महाप्रभु इस अवतार में अपना भेद बदल कर सहायता करने के लिए आए, और सब लोगों को उन्होंने एक महाप्रकाश लीला किया। उन्होंने 21 घंटे का शत प्रहरी लीला, 21 घंटा चली वो लीला, और उनके सारे भक्त इकट्ठा हुए वहां पर, और एक एक भक्त का जो जो भाव था वो दर्शन उनको दिखाया। फॉर एग्जाम्पल हनुमान जी आए मुरारी गुप्ता बनकर, तो मुरारी गुप्ता को राम दरबार में दर्शन दिया। कुसुमासव जो गोप थे वो श्रीधर बनकर आए थे, उनको और अद्भुत दर्शन दिखाया। बृहस्पति आए थे सार्वभौम भट्टाचार्य बनकर, उनको उन्होंने तो कई दर्शन दिए, एक दर्शन नहीं दिया, कई दर्शन दिए। राधा कृष्ण का भी दिया, उसके बाद में एक ऐसा दर्शन दिया षडभुज गौरांगा, यानी दो हाथ हरे रंग के धनुष बाण लेकर खड़े, दो हाथ नीले रंग के बांसुरी बजा रहे, दो हाथ गोल्डन रंग के एक कमंडल दंडा लेकर खड़े। चैतन्य महाप्रभु गोल्डन रंग के, राम हरे रंग के, कृष्ण नीले रंग के, ये छह भुजा वाला एक अद्भुत दर्शन जो कभी भी किसी को भी दिखाया नहीं आज तक भगवान ने किसी भी युग में या किसी भी अवतार। ऐसे एक ही अवतार ने, एक ही अवतार में भगवान ने 48 साल के समय में कई प्रकार के दर्शन कई प्रकार के भक्तों को दिए अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार। और बताया मुरारी गुप्ता तुम तो हनुमान हो, ऐसे कहते ही मुरारी गुप्ता की पूंछ निकली बाहर से और वो हनुमान के भाव में आ गए। बोले कहाँ है सीता, कहाँ है रावण। ये एक विशेष बात ध्यान रखना, सभी अवतारों के सभी भक्त जो है वो चैतन्य महाप्रभु के 48 साल की लीला में सम्मिलित हुए थे और सब लोगों ने मिलकर कीर्तन किया था, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। पहले दिन में शुरू किया, फिर रात में शुरू किया, फिर रोड पे शुरू किया, और उस संकीर्तन में जो भी जानते अनजानते वो सम्मिलित हुए वो सब लोग भाव विभोर हुए। कितना समय हमारे पास में हो गया समय, तो ये महाप्रभु की जो लीला है वो जन्म लीला हम आज यहाँ पर इस भूमि पर बना रहे हैं। इस भूमि का महात्म्य समझना जरूरी है हमको, थोड़ा मैं 5 मिनट एक्स्ट्रा लूंगा लेकिन जरूर बताऊंगा। इस क्षेत्र का नाम है निर्मल सरोवर। निर्मल सरोवर के किनारे में हमारा ये थोड़ा सा टेकड़ी है जिसके ऊपर ये मंदिर भी है और हॉस्पिटल भी है। श्री चैतन्य महाप्रभु संन्यास लेकर जब गए तो वो दक्षिण भारत की यात्रा में गए थे, तो वो यात्रा बड़ी लंबी है, मंदिर लीला कहते हैं। उसमें वो बॉम्बे में आए थे, प्रभु रामचंद्र भी बॉम्बे में आए थे। बॉम्बे पवित्र क्षेत्र है बाय द वे, उसका नाम है कृष्ण द्वैपायन क्षेत्र। तो मुंबा देवी का स्थान है ये, महालक्ष्मी का स्थान है, यहाँ पर व्यास देव का भी स्थान है ये। मलबार हिल में एक बाणगंगा नाम का जगह है जहां पर राम जी को वनवास में जब आए थे तो गायत्री का जप करना था तो मीठा पानी चाहिए था, बाजू में तो समुद्र का खारा पानी था। लक्ष्मण को कहा लक्ष्मण यहाँ पर गंगा जी को प्रकट करो, लक्ष्मण ने बाण लिया, वैसे होता पिक्चर में, मंत्र का उच्चारण किया, गंगा जी को प्रकट किया उधर पहाड़ के अंदर। आज भी उस पहाड़ में निरंतर पानी बह रहा है, आप जाके देखो, यकीन करो, खुद जाकर देखकर। एक जगह से पत्थर में से पता नहीं कहां से अनंत धारा निकल रही है, अनंत धारा। और उस धारा में से ऐसा नहीं कि तालाब बहकर ऐसा बह रहा है, ऐसा भी नहीं, तालाब भी वही है, धारा भी वही है, पानी चल रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। तो भगवान ने वहां पर गायत्री जप किया है और जो गंगा प्रकट हुई उसको बाण गंगा कहते हैं, बाण से प्रकट हुई गंगा। भगवान ने गंगा प्रकट किया मलबार हिल में, तो उसके अगले वाले अवतार में जब चैतन्य महाप्रभु वहां पर आए तो चैतन्य महाप्रभु ने उस बाण गंगा में स्नान किया और वहां पर बाण गंगा के आसपास में कीर्तन किया भगवान के नाम का, सबको भाव विभोर कर दिया। और इसका मतलब क्या हुआ कि बंबई में चैतन्य महाप्रभु के दयालु चरण कमल गरे पड़े हैं और वहां से वो समुद्र किनारे वाले रास्ते में से कीर्तन करते 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 उत्तर दिशा में गए। मतलब कहां गए, आप लोग उत्तर दिशा में बैठे हो मलबार हिल के, मलबार हिल वहां पर मुंबई के दक्षिण भाग में, और समुद्र किनारे का जो वेस्टर्न रेलवे है ना, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, वेस्टर्न रेलवे है, वो सारा समुद्र किनारे से ही चल रही है। उसी रास्ते से चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते 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 पूरा अंधेरी जोगेश्वरी विरार ऐसे एरिया में चले, वो विरार रोड को क्रॉस करते हुए आगे गए और शूर्पणखा नाम के जगह पर पहुंचे हैं। इसका वर्णन शास्त्र में दिया है, चैतन्य चरितार्थ में शूर्पणखा नाम के जगह पर उन्होंने एक तालाब में स्नान किया है जिसका नाम है निर्मल सरोवर, इसके किनारे आप लोग बैठे हो। तो ये जो निर्मल सरोवर है इसमें स्वयं कृष्ण भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्नान किया है, उनके चरण चिन्हों का स्थान भी है, अभी तो मिल नहीं रहा है लेकिन वहां पर उनके चरण चिन्ह का भी वर्णन है कि चरण चिन्ह महाप्रभु के है। ये बहुत पवित्र स्थान है, लोग कैसे भूल जाते हैं कुछ समय के बाद। बॉम्बे भी बहुत बड़ा पवित्र स्थान है लेकिन वो स्टॉक एक्सचेंज आ गया उधर, हाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंग आ गई, थोड़ा व्यापार आ गया तो सब बाजू में रह गया, और एक कोने में मुंबा देवी, एक कोने में महावर्ष में रह गई बस, बाकी सब लोग बिजनेस बड़ी बड़ी बिल्डिंग 110 माले की, 26 माले की, 28 माले की, पैसा पैसा करोड़ों पति लोग वहाँ आ गए। लगता है कि भय तो भक्ति व्यक्ति तो करना मुश्किल हो गया इधर, लेकिन है तो पवित्र क्षेत्र में। जिस जल के अंदर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया है वो अवेलेबल है उधर आज भी बाणगंगा में। तो इस तरह से निर्मल सरोवर जहां पर आप बैठे हो वहां पर चैतन्य महाप्रभु का ये पवित्र तीर्थ स्थान है, इसको हमको उभारना चाहिए, इसका उद्धार तीर्थ का जीर्ण उद्धार करना चाहिए। हम स्वयं भगवान आकर जब आपको स्नान करके उस जल के चरणामृत का लाभ दे रहे हैं इसी जगत पर परशुराम जी आए हुए हैं, उन्होंने यहाँ पर भजन किया हुआ है। एक समय था महाभारत में, जब भी महाभारत का युद्ध होने ही वाला था, तो बलराम जी का शिष्य थे दुर्योधन, और बलराम जी कृष्ण के भाई भी है, और कृष्ण के प्रिय थे पांडव, और पांडव कौरव के जब बीच में युद्ध होने वाला था, तो बलराम ने सोचा कि अरे मैं भी किसका पक्ष लूं, ये मेरा शिष्य है पट्ट शिष्य गदा सीखने वाला, और ये मेरे भाई के बड़े अच्छे भक्त और मित्र हैं, तो मुझे इन दोनों के झगड़े में नहीं पड़ना है। तो उन्होंने कुछ ऐसे ही बहाना बनाया और वो तीर्थ यात्रा में चले गए, और उनका तीर्थ यात्रा का वर्णन पूरा भागवत में दिया है कि वो सैकड़ों जगह पर गए भारत में, ऊपर से लेकर नीचे तक। उसके दौरान वो निर्मल सरोवर में भी आए हैं, यहां पर भी उन्होंने दर्शन किया है। इसी निर्मल सरोवर के किनारे अत्रि मुनि और अनसुया देवी की कुटिया भी थी। अत्रि मुनि और अनसुया देवी के माध्यम से दत्तात्रेय भगवान का जन्म हुआ है। अत्रि और अनसुया के घर पे ब्रह्मा विष्णु महेश आए थे, बालक बनकर लीला किया उन्होंने उनके घर पे, याचना किया कि हम उनको पुत्र बनना चाहते हैं, तो ब्रह्मा विष्णु एकत्र होकर दत्तात्रेय बने उनके पुत्र के रूप में। तो ब्रह्मा जी के अलग पुत्र बने, चंद्र देवता बने, और शिव जी के अलग अंश बने दुर्वासा मुनि के रूप में, वही अनसुया देवी है वो। आप सोचिए कि उनका भी आश्रम यहाँ पर था, और इसी जगह पर ये जो एक तरफ निर्मल सरोवर है, उसके अपोजिट जो है ना और एक सरोवर है, उसका नाम विमल सरोवर। उस विमल सरोवर पे शिवजी भगवान ने बिमलासुर का वध करके उसको फेंक दिया था, तो वो पवित्र स्थान बना बिमलासुर को रखा हुआ विमल कुंड, विमल सरोवर। दोनों तरफ पवित्र स्थान है, बीच में हमारा टेकड़ी है, और बीच में क्या है, बीच में आदि शंकराचार्य यहां पर आए हुए, उन्होंने यहां पर तपस्या किया है। उनके यहां पर स्मृति चिन्ह भी, उनकी समाधि भी बनी हुई है। आदि शंकराचार्य कौन थे, शंकर भगवान है स्वयं, उनका अवतार है। कृष्ण की आज्ञा पर वो एक विशेष उद्देश्य से आए थे। एंड में उन्होंने कहा भज गोविंदम भज गोविंदम भज गोविंदम गूढ़मते, सब मूर्ख लोगों मिलकर भगवान का भजन करो, गोविंद का भजन करो, ये कहने वाले आदि शंकराचार्य स्वयं शंकर भगवान। तो ये जो परिसर जिसमें हम बैठे हैं बहुत ही पवित्र स्थान, आते ही अगर आप भजन करने वाले हो तो आपको भजन के अनुकूल वातावरण का अनुभूति होगी यहाँ पर। इमीडिएटली आपको लगेगा कि भजन करने के लिए बहुत अनुकूल स्थान है, परफेक्ट अरेंजमेंट है यहाँ पर। तालाब का किनारा है, थोड़ी टेकड़ी है, अच्छी सघन वृक्षावली है, शांत वातावरण है, शुद्ध हवा है, कोई गड़बड़ नहीं है, संतों का भजन किया हुआ स्थान है। और उसी जगह पर स्वामी श्रद्धानंद ने, इसके अंदर एक गुफा है उस तालाब के किनारे में, थोड़ी जगह इधर इसी परिसर में है, तीन मंदिर आपको नीचे जाना पड़ेगा थोड़ा सा, दो तीन स्टेप्स, दो तीन सीढ़ियां, उसके अंदर बैठकर स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज ने तपस्या किया है। तो ये तपस्थली है, आपको अगर आत्म साक्षात्कार करना है उसकी पवित्र स्थली है ये। और 200-300 साल पहले छत्रपति शिवाजी महाराज का यहाँ पर किला है, किला था जहाँ पर है अभी किला बाजू में पास में, और यहीं पर शिवाजी महाराज ने अपना नेवी का आरंभ किया था, आर्मार कहते हैं उसको, जलीय सेना को आरंभ किया था, और पूरा हमारे धर्म का अधिष्ठान यहाँ बनाया था। पूरी भूमि शिवाजी महाराज के आधिपत्य में यहाँ पर हिंदवी राज्य का स्थापन करने के लिए बहुत शक्तिशाली थी यहाँ पर, ये भूमि है वो वसई की भूमि। तो ये क्षेत्र जो है चैतन्य महाप्रभु के चरण स्पर्श से पवित्र हो गया है, बलराम जी के चरण स्पर्श से पवित्र हो गया है, परशुराम जी के चरण स्पर्श से पवित्र हो गया है, अत्रि मुनि और अनसुया देवी के चरण स्पर्श से निवास से पवित्र हो गया है, आदि शंकराचार्य के चरण स्पर्श से हुआ है, स्वामी श्रद्धानंद के चरणों से भी पवित्र हुआ है, संतों की भूमि है ये। और ये हॉस्पिटल भी जो हमने लिया है चलाने के लिए, ये भी एक अद्भुत कहानी है, हमने कभी भी सोचा नहीं था कि हम लोग यहाँ पर आके चलाएंगे, हमारे पास वहाँ बहुत काम है मीरा रोड के, लेकिन जिस प्रकार से अभी लंबी कहानी है वो, उस प्रकार से अस्पताल अपनी ही तरफ से हमारे हो रहा है कि ले लो इसको, यहाँ सेवा करो, यहाँ सेवा करो। हमने कहा नहीं, हमको मुमकिन नहीं, हमारे पास मैन पावर नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, हमारे पास बहुत काम है, नहीं नहीं ले लो ले लो ले लो करके बड़े प्रेम से उन्होंने, हमारे सर हैं वो डॉक्टर सक्सेना, उनके अंडर हम पढ़े हैं बचपन में, मतलब मेडिकल कॉलेज में, तो वो यहाँ के अध्यक्ष थे इस संस्था के, उन्होंने बहुत सारा हमारे साथ आदान प्रदान किया प्रेम का, भक्ति विदान में हॉस्पिटल में आए, और हमने ना ना बोलते हुए प्रेम से हमारे झोले में डाल दिया। बाद में हमको समझ में आया यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने स्नान किया हुआ सरोवर है जिसके किनारे में अस्पताल है, तो ये चैतन्य महाप्रभु कोई दिव्य योजना है जो हमको खींचकर लाई है। तो इसलिए मैंने कहा कि ये ऐतिहासिक उत्सव है आज का, क्योंकि तो आज के बाद हम इस जगह का सत्संग के लिए उपयोग करने वाले हैं और ये प्रयास करने वाले हैं कि जिस उद्देश्य से महाप्रभु चैतन्य ने पूरे भारत पर भ्रमण किया हरिनाम का संकीर्तन करते हुए, वो हरिनाम संकीर्तन का लाभ यहाँ के पूरे लोगों को प्राप्त हो जाए बिना किसी भेदभाव के, ना जाति धर्म ना भाषा ना रंग के भेदभाव से, सब लोगों को बिना किसी भेदभाव से भगवान नाम की कृपा प्राप्त हो जाए, इस उद्देश्य ये गौर पूर्णिमा यहाँ मनाई जा रही है। ऐसा केंद्र बने कि लोग यहाँ पर आध्यात्मिक प्रेरणा, आध्यात्मिक साक्षात्कार, आध्यात्मिक पवित्रता और उन्नति प्राप्त करने के लिए यहाँ पर आए और वो पोषण प्राप्त करें जो जरूरी है हमारे लिए, आध्यात्मिक पोषण, आत्मा का पोषण वो प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। ऐसे ही स्थान को हमको बनाना है। बनाना क्या है, वो है, लेकिन हमको जानकारी देना है कि ऐसा है। हम लोग किसी चीज को पवित्र नहीं बना सकते, वो पवित्र जगह है उसको हम लोग खाली बना के रख सकते हैं कि भाई मेंटेन करो उसे और उसके बारे में लोगों को बताओ कि भाई ये स्टील नहीं है, ये चांदी का है। वो पता नहीं है ये स्टील नहीं है, लगता है स्टील का है लेकिन ये चांदी का है, ये बताना पड़ता है ना, तब मालूम पड़ेगा। वो लोग कहे स्टील का है, ऐसे लगा ठीक है, झाड़ है, जंगल है, पेड़ है, अच्छा है। फिर आपको बताएंगे तब पता चलेगा कि इसका कितना महात्म्य है। तो जब महात्म्य पता चलेगा तो आप बार बार आएंगे, भजन करने के लिए आएंगे, हाँ कभी पिकनिक लेकर आएंगे तब वहाँ पर भजन करेंगे, सान्निध्य लेंगे, इस कुंड का आचमन करेंगे वहाँ पर और भगवान के सब नज़दीक आने के लिए इस जगह का उपयोग करेंगे। इसी उद्देश्य यहाँ पर उसी भगवान का जन्मदिन से आरंभ किया है, गौर पूर्णिमा के दिन से, क्योंकि गौरांग महाप्रभु वो कृष्ण का अवतार है जिन्होंने वो भगवान का नाम बड़ी आसानी से बड़ी सहजता से सब लोगों को बांटकर अपने प्रेम को लोगों को दिया है। तो वही कृपा कर सकते हैं, उनकी कृपा से ही सब परिवर्तन हो सकता है। इसीलिए गौर पूर्णिमा के दिन ये उत्सव, ये कार्यक्रम आरंभ करने का हमने निर्णय किया। तो यहाँ के जो रहवासी यहाँ पर आए हैं, जो विरार के हैं, वसई के हैं, विरार रोड के सभी लोगों को हम विनती करते हैं, आइए आप यहाँ पर इस जगह का लाभ लीजिए और भजन कीजिए और सत्संग आयोजित किया जाएगा, उसमें भी बड़ी संख्या में आइए, नए नए लोगों को लेकर आइए। खास करके मैं यहाँ के समुद्र किनारे रहने वाले सबको मैं आह्वान करता हूँ कि आपका क्षेत्र है ये, आपके क्षेत्र की महिमा है, जहाँ आप निवासी हो आप आइए, पूरा लाभ लीजिए इसका, इतिहास में मत डाल दीजिए उसको, भूल मत जाइए उसको, स्वीकार कीजिए। भगवान ने ये सब हमारे लिए किया है। यहाँ पर आकर स्नान करने के पीछे बड़ी लंबी योजना है भगवान की, यहाँ पर मेरे होने से, मेरे स्नान करने से हजारों लाखों और करोड़ों लोग लाभ लेंगे आगे जाकर और मेरे भक्त बनकर मेरे पास आएंगे, इस उद्देश्य से भगवान ने भ्रमण किया है। भगवान जहाँ चरण रखते हैं दिव्य उद्देश्य से रखते हैं। आइए हम सब मिलकर इस भगवान के दिव्य करुणा का कृपा का लाभ लें, वंचित न रहे इससे। हाँ बरसात हो रही है, हम लोग छतरी लेके खड़े हैं या बिल्डिंग के अंदर खड़े हैं, नहीं, वो भगवान की कृपा की वर्षा हो रही है उसका लाभ लो, उसमें भीगो और अपने आप को भूल जाओ और भगवान को समर्पित करो अपने आप, वही जीवन है। तो जीवन का मतलब क्या है, जैसे कुत्ता बिल्ली भी जन्म लेते हैं, हम भी जन्म लेते हैं, क्या फर्क है उसके, वो भी जिंदा होते हैं, वो भी बच्चे पैदा करते हैं, वो भी सेक्स करते हैं, वो भी खाना खाते हैं, सो जाते हैं, हम लोग भी वही कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। मनुष्य होकर भगवान की कृपा को प्राप्त करना है तो हम मनुष्य बनने के लायक हो जाएंगे, नहीं तो मनुष्य होकर मनुष्य नहीं है। भागवत में लिखा है द्विपद पशु है, दो पैरों के पशु, तो उस स्थिति से हमको हटना है, इन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति को हटना है, हट जाना उससे और मनुष्य के सर पर आकर भगवान का भक्त बनना है। इस उद्देश्य के लिए भगवान ने हमको ये मनुष्य का जीवन दिया, तब जाकर भगवान का यहाँ आने का उद्देश्य सफल होगा, तब जाकर भगवान को हमको मनुष्य का जन्म देने का उद्देश्य सफल हो जाएगा और इस क्षेत्र का निर्माण करने का महत्व भी सफल हो जाएगा, हर चीज सफल हो जाएगी, केवल भगवान का नाम स्वीकार करो। बोलो सब लोग हरे कृष्णा,
हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे,
हरे राम
हरे राम
राम राम
हरे हरे। एक बार मेरे बाप में बोलो हरे कृष्णा,
हरे
कृष्णा
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 हरे हरे,
हरे राम
हरे राम
राम राम
हरे हरे।
इस महामंत्र को उच्चारण करते हुए कभी कभार अगर आपके आंख में से एक आंसू आता है ना, तो भगवान को आप जीत लेंगे, और भगवान आपको अपना बना लेंगे, मैंने वादा किया। अगर कोई भक्त मेरा नाम महामंत्र उच्चारण करते हुए एक भी कोने में उसके आंखों में एक भी अश्रु आ जाए कभी प्रेम का, तो मैं उसका हो जाऊंगा, अपने आप को बेच दूंगा उस भक्त के, उसको अपना बना लूंगा। तो क्यों ना हम सब लोग इस भाग्य को प्राप्त करें। थैंक यू वेरी मच, सबका बहुत धन्यवाद है। हरे कृष्णा।